आप सुन रहे हैं वैदिक लाइव पॉडकास्ट पर डॉक्टर देव कृष्णदास जी की मधुर वाणी में उपनिषद पर व्याख्यान की श्रृंखला में उपनिषद रहस्य एपिसोड संख्या 27।
नमस्ते मित्रों, आज हमारे इस उपनिषद रहस्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे केनोपनिषद के ईश्वर तत्व इस विषय के बारे में। मित्रों, निश्चित रूप से पूर्व सत्रों की समीक्षा करने से हम सब इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि ईश्वर ही एकमात्र ज्ञातव्य विषय है, ईश्वर ही एकमात्र प्राप्तव्य विषय है। परमेश्वर से जिस दिन मिलकर हम दिव्य शक्ति और अपनी जितनी संभावनाएं हैं एक जीवात्मा की, उन सभी संभावनाओं की पूर्ति कर लेंगे, निश्चित ही वह हमारे लिए एक सुखद अवसर होगा। उस अवसर की हम सबको प्रतीक्षा है। एक वैष्णव संत ने कहा, कदा पुनः शंखर थांग कल्पक ध्वजारविंदांकुश वज्र लांछन त्रिविक्रमत्व चरणाम्बुजद्वयम् मदीय मूर्धानमलम् करिष्यति। क्या बढ़िया भाव है इसका, कि कदा पुनः शंखर थांग कल्पक। वैष्णव संत है ये लोग, विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, विष्णु का आकार ये पुराण के हिसाब से निर्णित करते हैं। शंख चक्रधारी वो परमेश्वर कब हमारे लिए ज्ञातव्य होगा और उसके उस पवित्र चरण कमल में कब हम सिर रखेंगे, हमारा कल्याण होगा, इस तरह वैष्णव संत की प्रार्थना है। तो उसी शैली से हमें समझ लेना चाहिए, हम सबको उसी समय का इंतजार है कि कब उस परम तत्व के सानिध्य हमें मिलेगा और उसकी दिव्यानुभूति से एक जीवात्मा की जितनी संभावनाएं विकास की हो सकती है वह सारी संभावनाएं कब हमारी पूरी होगी, हम अपने पूर्ण सत्ता में पूर्ण समझ के साथ ज्ञान बल ऐश्वर्य के साथ स्वतंत्रता के साथ हम अपना अस्तित्व को सक्रिय कर पाएंगे। तो इस तरह विचार हम सबके मन में है। इसी विचार को पुष्ट करता है हमारे केनोपनिषद का अगला प्रकरण। केनोपनिषद यह कहता है ईश्वर ज्ञातव्य है, प्राप्तव्य है। अगर प्राप्तव्य है तो आपको ईश्वर प्राप्ति परक आर्ष विद्या का स्वाध्याय करना चाहिए। आपके अंदर एक ज्ञान के प्रति अभिलाषा होनी चाहिए, ज्ञानाभिलाषा, और उस ज्ञानाभिलाषा की पुष्टि होते ही ज्ञान परिशुद्ध करने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। ज्ञान कैसे परिशुद्ध होता है, ना जब आप निष्काम कर्म करते हैं, जब आप परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की दिशा में योगाभ्यास करते हैं, जब आप ईश्वर साक्षात्कार के उद्देश्य से मेडिटेशन यानी ध्यान और समाधि आदि की कोशिश करते हैं, साधना की कोशिश करते हैं, तो ज्ञान धीरे धीरे परिशुद्ध होता चला जाता है। तो प्राप्तव्य लक्ष्य का निर्धारण करें, ज्ञानाभिलाषी बने, ज्ञान परिशुद्ध करें, सत्याचरण करें और न्यायपूर्ण व्यवहार विनिमय करते हुए धर्मानुकूल मार्ग से चलें, तब जाकर स्वयं में पात्रता सिद्ध होगी और पात्रता सिद्ध होने पर ईश्वरीय जो दिव्यानुभूति आपको निश्चित रूप से उपलब्ध होगी। तो इसी विचार को बढ़िया आख्यान के माध्यम से केनोपनिषद प्रस्तुत करती है। अगर इस सुंदर आख्यान का हम नामकरण करना चाहें तो नामकरण यह होगा कि विनम्रता, संयम, जिज्ञासा और शरणागति के द्वारा परमेश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए चार आधार यहाँ बताया गया है कि पहले विनम्रता, दूसरा संयम, तीसरा आपको जिज्ञासा। एक बढ़िया अव्यर्थ साधना है, अगर जिज्ञासा जीवन में नहीं है तो विकास वहीं रुक जाने वाली है, विकास की जो प्रक्रिया रुक जाएगी वहीं। तो इसलिए जिज्ञासा की महत्वपूर्ण भूमिका अध्यात्म मार्ग में होता है। इसलिए तो पूछा कि चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञान सुकृति अर्जुनो आरतो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार व्यक्ति मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। एक आर्त यानी एक दुखी व्यक्ति निश्चित रूप से परमेश्वर का स्मरण करता है कि हे परमेश्वर मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। लेकिन सुखावस्था में कभी स्मरण करेगा ही नहीं, बल्कि क्रेडिट अपने को देगा, अरे हमने सब किया, ईश्वर ने क्या किया, हम अगर प्रयत्न नहीं करते तो ईश्वर क्या कर लेता। तो आर्त जिज्ञासु व्यक्ति निरंतर प्रयत्न करता है कि ईश्वर को जाने समझे और उसके अनुसार समझ लेने के बाद फिर आचरण करने लगता है। तो जिज्ञासा ही पहली कड़ी होती है, तो इसको आप समझ लेना चाहिए। अर्थार्थी धन प्राप्ति की इच्छा से कुछ व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करते हैं कि हे ईश्वर बढ़िया धन मिल जाए, चोर चोरी करता हुआ भी ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर आज मुझे कोई ना पकड़े और जो जहाँ सेंध डाल रहा हूँ वहाँ से पर्याप्त धन मिल जाए तो माह भर में चोरी करना छोड़ दूंगा। तो इसलिए ईश्वर का भी वो स्मरण करता है। और ज्ञानी च भरतर सब, ज्ञानी तो निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है। खैर अभी हम विषय पे आते हैं। विषय में ये चर्चा का विषय है कि विनम्रता, संयम, जिज्ञासा और शरणागति अगर आपके जीवन में है तो आप समझ लेना चाहिए आपको कि आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं और ईश्वर प्राप्ति की बहुत बड़ी संभावनाएं निश्चित रूप से आपके लिए दिखाई पड़ रही है। तो कथा यह है, कथा तो नहीं, इसको उपाख्यान कहते हैं, कथायाम सरसं वस्तु गद्ये रेव विनिर्मितम इत्यादि परिभाषा के अनुसार कथा की परिभाषा अलग है, यहाँ उपाख्यान, वैदिक उपाख्यान यह है। उपाख्यान के पीछे तार्किक दृष्टि यह है कि जो विषय वो बताना चाहते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से वो उसको प्रस्तुत करते हैं और दृष्टांत के सभी पात्र काल्पनिक होते हैं और इनमें जितने भी विषय आपको मिलेंगे ये तार्किक दृष्टि से समस्त विषय असंबद्ध होंगे, असिद्ध होंगे, लेकिन ये सब अवास्तविक घटनाएँ पात्र मिल करके एक वास्तविक सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। तो भली भांति इसे आपको समझ लेना चाहिए जो चाहते हैं कि इस जीवन में हमें परमेश्वर को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और उससे जुड़ करके जीवन को सुधार लेने के लिए कोई भी कसर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनके लिए ये उपाख्यान है कि एक बार देवता और असुरों का संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवता लोग कौशल से ईश्वर की सहायता ली और असुरों पे भारी पड़े, असुरों की हार हुई और देवताओं की जीत हुई। और जीत की जो खुशी है मनाते हुए देवताएं, जो देवता लोग हैं वो धीरे धीरे उच्छृंखलित होने लगे और व्यवस्थित होने पर देवता लोग आपस में सोचने लगे कि निश्चित रूप से हम पुरुषार्थी हैं, बलशाली हैं, हम में सामर्थ्य है, हम में कौशल है, हम विद्या के अधिकारी हैं और असुरों की कमियों को ढूंढ कर हमने उन पे वार किया और थोड़े ही समय हैं, थोड़ी सी अवधि में हमने उनको धूल चटा दी। तो इससे असुर निश्चित रूप से देवताओं से विद्या में नगण्य है और देवता कौशल में प्रमुख है, प्रबुद्ध है। इसलिए सारा श्रेय देवताओं का है, उनके पुरुषार्थों का है, उनकी जो तकनीकी युद्ध की रणनीति है श्रेय उन्हीं की है, इसमें और किसी का हाथ नहीं। लेकिन कथा में पहले कहा गया कि उन्होंने ईश्वर की सहायता ली, परमेश्वर से सहायता ली और उनके मार्गदर्शन में लड़ते हुए असुरों पे भारी पड़े, असुरों को पराजित किए। लेकिन देवता लोग भूल गए कि सहायता करने वाले वो परमेश्वर और कोई है। मैंने जैसे कहा था दृष्टांत जो होता है उसकी टांगे और पूंछे नहीं देखी जाती यहाँ, क्योंकि अगर तत्वतः देखा जाए परमेश्वर कण कण में मौजूद है, भला वह देवताओं की सहायता क्यों करें। परमेश्वर को अगर असुरों को हराना है तो संकेत मात्र, जस्य ज्ञानमयम तपः, संकेत मात्र से असुर धराशायी हो सकते थे, उनको आवश्यकता ही नहीं देवताओं का पक्ष लेना। लेकिन किसी विषय को प्रतिपादित करने के लिए एक वैदिक सिद्धांत होता है, परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः। ये प्रत्यक्षतः कोई बात कहते नहीं, परोक्ष रूप से प्रतिपादन करते हैं, तो इसलिए परोक्ष रूप से कहा गया। जो परमेश्वर का के द्वारा सहायता दी गई, कही गई जो बात है ये तत्वतः एक काल्पनिक है, इसमें आपको रस ढूंढने की, स्वारस्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी धीरज आपको रखनी होगी, आगे यात्रा हमें करनी है। तो उपाख्यान के अंत में हमें अपनी मंजिल मिल जानी है, अपने रहस्य मिल जाने हैं। तो आगे कथा इस तरह चलती है, उपाख्यान इस तरह चलता है कि जब देवताओं को अहंकार होने लगा, अपने पुरुषार्थ पे गर्व होने लगा, हमें भी तो गर्व होता है जब हम शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसे। अगर शेयर मार्केट में हम सक्सेस हो जाते हैं तो कहते हैं ये हमारी क्रेडिट है, इसमें और किसी की क्रेडिट नहीं है, हमारी बुद्धि है, अरे हमारी सोच है। हमने अगर ये तकनीक नहीं पढ़ी होती, ये विद्या हम अगर नहीं जानते तो इतनी सफलता नहीं मिलती। लेकिन उसी विद्या उसी पुरुषार्थ के साथ पैसे लगाते हैं, जो हार जाते हैं तो दोष किसके सिर में मर देते हैं, अरे ये पत्नी ही प्रमुख है, इसके कहने पर मैंने पैसा लगाया, अरे ये बेटे के कहने पे लगाया, मित्र के कहने पे लगाया, अरे इन्होंने हमें मार डाला, इन्होंने हमें गलत सलाह दी। लेकिन सफलता पे अपनी क्रेडिट होती है। तो इसी तरह देवताओं को भी यह अहंभाव होने लगा। तब अब परमेश्वर तत्काल उनके अहंभाव दूर करने के लिए एक विराट यक्ष के रूप धारण करके प्रकट हुए। देवताओं की जहाँ चर्चा हो रही थी उसके थोड़े ही दूरी पर, और कुछ देवताओं ने दूर से भांप लिया कि एक यक्ष वहाँ मौजूद है। यक्ष यानी एक असुर प्रजाति का एक प्राणी, भयंकर विशाल काय शरीर वाला एक प्राणी, जिसे देख करके ही लोग डर जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को, यक्ष को, हमारे पुराण शास्त्रकारों ने व्यांक में यानी कोषागार के रक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसके पीछे शोध की आवश्यकता है, क्यों उनको कोषागार का रक्षक बनाया गया, लेकिन इस चर्चा का अवसर यहाँ नहीं है। यहाँ केवल उस यक्ष की चर्चा है जिसका रूप धारण कर परमेश्वर प्रकट हुए। जिन देवताओं को यक्ष का स्वरूप का दर्शन हुआ वे आकर के प्रमुख देवताओं से कहने लगे कि अब हमने एक बड़ा यक्ष देखा और आपको इसका पता लगाना चाहिए। अभी तो हमने बड़े कष्ट से असुरों से पिंड छुड़ाया था, ये भयंकर यक्ष कहाँ से प्रकट हो गया, कहीं ये हमारे से राज्य न हड़प ले। तो देवताओं में से चर्चा हुई और सबसे प्रमुख देवता अग्नि को चुना गया और अग्नि को प्रेषित किया गया, जाके पता लगाओ ये यक्ष है कौन। केनोपनिषद इस उपाख्यान को सरस और सरल ढंग से प्रस्तुत करता हुआ कहता है, अग्नि पलक झपकाते वहां पहुंच गया यक्ष के पास और यक्ष को भी बड़ी हैरानी हुई, अरे इस देवता में इतना पुरुषार्थ है। तो उस यक्ष रूपी परमेश्वर ने पूछा कि देवराज अग्नि, तो आपका परिचय बताइए। उसने कहा मेरा नाम जातवेदस है। जातवेदस यानी उत्पन्न हुए प्रत्येक प्राणी का मैं ज्ञान रखता हूँ। कौन कहाँ उत्पन्न हुआ, किसके साथ क्या घटित हो रहा है, प्रत्येक घटना का मैं चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत हूँ। देवताओं में जातवेदस करके मुझे पुकारा जाता है। तब उस ब्रह्म स्वरूप यक्ष ने कहा आपकी और क्या तारीफ हो सकती है, आप में क्या खासियत है, क्या गुण है, क्या पुरुषार्थ आप में है। तो उसने स्पष्ट ही कहा मैं पलक झपकाते ही जिसे कहो उसे भस्म कर सकता हूँ। संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने में मुझे थोड़ा सा ही समय लगेगा, कोई विशेष समय नहीं लगने वाला है। तो इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा से मैं युक्त हूँ। तत्काल उस ब्रह्म स्वरूप यक्ष ने कहा मैं एक तिनका तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुम उसको जला करके दिखा दो, फिर जातवेदस जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। तत्काल उसने पुरुषार्थ पूर्वक अग्निदेव ने उसको जलाने के लिए प्रयत्न किया और उस तिनका को जलाना क्या उसको थोड़ा हिला भी नहीं सका, टस से मस नहीं कर सका और लज्जा को प्राप्त कर अग्निदेव अब पीछे मुड़ते हुए देवताओं की टोली की ओर भागने लगे। बल्कि चलते नहीं बस, बल्कि भागते हुए वहाँ पहुँच गए देवताओं की टोली में और कहने लगे मैं हार गया, मेरा सारा पुरुषार्थ निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया, उस यक्ष के बारे में मैंने जानकारी कोई भी प्राप्त नहीं कर पाई। तो इसके बाद देवताओं ने वायु नामक देवता को भेजा कि तुम भी जाके पता लगाओ। और वायु देवता अग्नि से भी तीव्र गति से चलने लगे और आधे पलक झपकाते ही वहाँ पहुँच गए और उनसे उस यक्ष ने पूछा कि हे पुरुष, दिव्य पुरुष, आप बताओ आपका नाम क्या है। तब वायु देवता कहने लगे मुझे देवता लोग मातरिश्वा कह करके पुकारते हैं। मातरी यानी अंतरिक्ष में, स्वा स्वसीति यानी अंतरिक्ष में मैं निर्बाध विचरता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, संपूर्ण सृष्टि में मेरा प्रवेश है, विचरण है। तो ऐसी दिव्य शक्ति से मैं युक्त हूँ और मुझे आपका परिचय चाहिए। तब यक्ष ने कहा मैं अपना परिचय दूँ, लेकिन और आप में क्या खासियत है, ना मैं पलक झपकाते ही सबको उड़ा देता हूँ और आपको भी उड़ा दूंगा आसमान में, केवल आदेश मिलते ही, लेकिन मुझे आपका परिचय चाहिए। तब यक्ष ने कहा भले ही आप मुझे उड़ाओ या मेरा परिचय प्राप्त करो, इससे पूर्व मैं आपको एक परीक्षा के तौर पे उतारना चाहता हूँ, इस तिनके को आप उड़ा के दिखा दीजिए। और उसने सारा पुरुषार्थ वायुदेव ने लगाया और तिनका टस से मस नहीं हुआ और तुरंत पीछे मुड़कर वायुदेव भागने लगे। देवताओं के टोली में चर्चा हुई अब योग्य व्यक्ति कौन है जो उस यक्ष को जान सके। तब सबने इंद्रदेव को भेजा और बड़े ही व्यग्र और उद्दंड स्वभाव से युक्त इंद्रदेव वहां पहुंचे और आते वक्त क्या क्या नहीं सोचे होंगे कि अरे ये सब कोई असमर्थ रहे, लेकिन मैं अगर उस यक्ष को देखूं तो उसका ये हाल करूं कि वो बार बार याद दिलाएगा कि इंद्र है कौन, कितना शक्तिशाली है, तो उसको समझ में आ जाएगा। निश्चित ही कुछ ऐसा सोच करके वो आए होंगे और पहुँचे उस दिव्य यक्ष के समक्ष। मित्रों, दर्प और अभिमान से युक्त इंद्र पहुँचते ही वह जो दिव्य यक्ष था वह अंतर्धान हो गया, कहीं गायब हो गया। यद्यपि उपनिषदकार यहाँ नहीं लिखते हैं कि इंद्र ने यह सोचा कि मुझे देख के भाग गया, पर यह वहाँ की जा सकती है। दर्प गर्व अभिमान से युक्त इंद्र निश्चित ही सोचा होगा देखो जिस यक्ष को अग्निदेव और वायुदेव नहीं समझ पाए वह यक्ष मेरे पहुँचते ही भाग गया, यानी कितना डरपोक था, कितना कायर था, कितना भीरु था, जरूर ऐसा कुछ सोचा होगा। लेकिन उस इंद्र ने वहाँ पहुँचकर चारों ओर झांकने लगा और कहीं न उसने यक्ष को प्राप्त किया। बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन दूर से उसको एक प्रतिच्छवि नजर आई और उस ओर पहुँच करके देखा कि वहाँ हैमावती उमा देवी मौजूद थी, यानी देवी पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती वहाँ मौजूद थी, बैठी हुई थी। और उस पार्वती देवी से इंद्र ने पूछा कि माता श्री, अब बताइए यहाँ कौन सा वह यक्ष था जिन्होंने देवताओं को परेशान कर रखा था और मेरे आने पे वो गायब क्यों हो गया? तो पार्वती जी वहाँ स्पष्ट उसको करती हैं कि बेटे, आप समझ लो कि यह जो इंद्र था, यह जो यक्ष था, वह परमपिता परमेश्वर था, और आपके पहुंचने से पहले वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि आप अहंकार स्वभाव के हैं, परमेश्वर को अहंकार से नहीं जाना जाता। तो अहंकारी व्यक्तियों के लिए परमेश्वर हमेशा अदृश्य रहते हैं। फिर उमा देवी समझाती हुई बोली, अभी भी वो इसलिए अदृश्य है क्योंकि आपका अहंकार मौजूद है। जब आपका अहंकार गिर जाएगा, आपका अहंकार चूर चूर हो जाएगा, आप विनम्रता से युक्त हो जाएंगे, जिज्ञासा से युक्त हो जाएंगे, तब आपको निश्चित रूप से उस दिव्य यक्ष स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार हो पाएगा। इसी के साथ कथा की समाप्ति होती है, उपाख्यान समाप्त होता है। उपाख्यान के अंत में कहा जाता है कि देवताओं में तीन देवता प्रमुख हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, और तीनों में भी इंद्र देवता प्रमुख है। इसलिए प्रमुख है क्योंकि इंद्र ने जिज्ञासा की, समझने की कोशिश की वह यक्ष कौन है, और इस प्रयत्न से प्रेरित होकर के उन्होंने उमा देवी से प्रश्न किया। तो इसलिए तीनों में इंद्र प्रमुख है और देवताओं में तीनों प्रमुख है। इसी के साथ यह उपाख्यान समाप्त होता है। अब इस उपाख्यान पे हम समीक्षा करते हैं, समीक्षा का अवसर है। केनोपनिषद इस उपाख्यान के माध्यम से हमें कहना क्या चाहते हैं? केनोपनिषद बहुत कुछ इसमें कहना चाहते हैं। सबसे पहले पात्रताओं की एक श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ जो सबसे पहले यक्ष उत्पन्न हुआ वह परमेश्वर है, और यहाँ जो अग्निदेव है यह नेत्र शक्ति से युक्त, यानी दृष्टि शक्ति से युक्त हमारा नेत्र इंद्रिय है। यहाँ जो वायु शब्द है, वायु शक्ति है, यह हमारा प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति का वाचक यहाँ वायुदेव है। यहाँ जो इंद्र है, यह इंद्र जीवात्मा है, और यहाँ जो उमा देवी है, हैमावती उमा देवी, तो उमा का इतिहास अत्यंत नवीन है और इंद्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, और इसके साथ परमेश्वर को जोड़ देना ये बिल्कुल घुल मिला इतिहास है। इसलिए कथा का रहस्य तो तत्वतः यही है, यहाँ जो उमा देवी है वह है अध्यात्म विद्या। अब इसकी समीक्षा करते हैं। यह नेत्र लाखों कोशिश कर लेने के बाद, लाखों प्रयत्न कर लेने के बाद, दूरबीन आदि की सहायता से भले ही ग्रह नक्षत्र सृष्टि के देख लेने के बाद, विज्ञान की तकनीक के साथ नेत्र की यात्रा होने के बावजूद भी वह परमेश्वर को कभी जान ही नहीं सकता। इसलिए यह नेत्र रूपी जो अग्निदेव थे वापस चले गए। कहाँ चले गए? देवताओं की टोली में, क्योंकि नेत्र का विषय परमेश्वर है ही नहीं। कई बार प्राण शक्ति को भी अभिमान होता है क्योंकि आत्मा के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। बड़े लंबे समय तक प्राण शक्ति आत्मा के साथ नहीं छोड़ती, तो इस आत्मशक्ति भी परमेश्वर को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अज्ञेय सर्वथा इंद्रियों शक्तियों द्वारा, इंद्रिय परमेश्वर को जानने में असमर्थ है। भौतिक इंद्रियां हैं, प्राण शक्ति भी भौतिक तत्व है। अगर अभौतिक होता तो आत्मा के साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश कर जाता, लेकिन प्राण प्रवेश नहीं करता। प्राण का एक पृथक सत्ता है। भौतिक ऊर्जाओं में सबसे सूक्ष्म भूत जो ऊर्जा है वह प्राण ऊर्जा है, वह अंतःकरण रूपी ऊर्जा है। मृत्यु लोक में ही यानी मुक्ति लोक से पूर्व ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए प्राण शक्ति से ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। अब यहाँ जो इंद्र है वह जीवात्म शक्ति का वाचक है। जीवात्मा दंभ दर्प अभिमान क्रोध और पारुष्यादि जो आसुरी वृत्तियों से युक्त होकर परमेश्वर को कई बार जानने का दावा करता है, कई बार समझने का दावा करता है, कई बार विफल हो जाता है, और हर दावा उसका विफलता का ही हर दावा विफलता की संकेत ही देता है, क्योंकि सफलता इस दावे में नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि जीवात्मा जब अहंभाव से रहित हो जाता है तभी ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। अहंकार से प्रेरित जीवात्मा पहुँचते ही यक्ष का अदृश्य हो जाना इसी का संकेत है कि अहंकार ही भयानक शत्रु है। अंतःकरण के अस्तित्व पे कभी भरोसा नहीं करना। देखे हुए चीज जिसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं उसमें भी भ्रांतियां हो सकती है। आजकल दूध में मिलावट हो रही है और दूध का जो गुणांक है उस गुणांक पे भी दूध को उतारा जाता है और उसमें क्या मिलाते हैं, निरमा आदि पाउडर मिलाया जाता है और उसको मशीन लगा करके व्यवस्थित ढंग दिया जाता है। कुछ उसमें दूध मिलाया जाता है, कुछ पानी मिलाया जाता है, कुछ दूसरी चीज़ मिलाई जाती है और जो गुणांक में भी उसको खरा उतारा जाता है और डायरी में आजकल वही चल रहा है। तो ऐसे दूध को पी लेने के बाद भी, परख लेने के बाद भी नेत्र धोखा खा जाता है, अंतःकरण धोखा खा जाता है और वैज्ञानिक कोई भी साधन उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो इससे आप अनुमान लगाइए, अंतःकरण का प्रमाण यथार्थ नहीं है। यथार्थ प्रमाण तो परमेश्वर प्रदत्त ज्ञान ही है। जब हमारा यह अंतःकरण भौतिक द्रव्यों को नापने में समर्थ ही नहीं है तो वह परम तत्व को कहाँ नाप सके। आपके नेत्र के समक्ष मृग मरीचिका दिखाई पड़ती है और भागता हुआ आदमी चला जाता है जल की तलाश में और वापस लौट आता है, वह भी तो भ्रांति है। उमड़ता हुआ बादल आपको लगता है कि बरस जाएगा लेकिन बादल नहीं बरसता, बादल भी अपने मर्यादा सृष्टि के नियमानुकूल बरसता है। तो इसलिए ये जो अंतःकरण है, आपके ज्ञानेन्द्रियों हैं, ये ज्ञानेन्द्रियों के विषय भौतिक पदार्थ भी नहीं, अभौतिक परमात्म तत्व कैसे हो सकता है। सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग ईशोपनिषद का अध्ययन तो करें ही करें, क्योंकि वह वेद का अंश है, लेकिन केनोपनिषद का भी अध्ययन करें। ये छोटी सी उपनिषद है लेकिन इसके उपदेश हृदय के अंततम स्तर को स्पर्श करने वाले हैं। तो सभी दर्शक बंधुओं से यही निवेदन है कि इस उपनिषद को अध्ययन करके मनन चिंतन का विषय बनाएं और निधिध्यासन उपनिषद के आचरण उपदेशों के अनुरूप आचरण करें और जीवन को सफल बनाएं। तो इन्हीं विचारों के साथ इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। आने वाले अवसर में अन्य किसी विषय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का अभिवादन, आभार।